किसी पहाड़ के ऊपर किसी नदी के ऊपर जाती है बिना सोचे समझे, वो तो पशुओं से भी बदतर भक्ति हुई ना। तो भक्ति जब ज्ञान के बिना होती है तो वो अंधी हो जाती है, ज्ञान जब बिना भक्ति की होती है तो वो अहंकारी होता है। कर्म करने वाला के अंदर अगर ज्ञान ना हो भक्ति ना हो तो वो मशीन से कम बदतर होता है। तो कोई भी चीज एक्सक्लूसिव नहीं होता, चारों एक दूसरे के प्रति रिलेटेड होते हैं। आप ज्ञानी तभी बन पाएंगे इन रियल सेंस जब आपके अंदर वो डिवोशन आए, जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएं, जब आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करे। आप तभी भक्त बन पाएंगे जब आपको समझ हो आप किसकी भक्ति कर रहे हो, आपके कैरेक्टर में वो रिफ्लेक्ट करता हो, आपकी माइंड उस जिसके प्रति डिवोशन है वह सिंगल पॉइंटेड हो। अगर वहां ध्यान नहीं, कर्म नहीं, ज्ञान नहीं, वो भक्ति कुत्ते बिल्ली की भक्ति से भी बदतर होती है। वो ज्ञान खतरनाक होता है किसी ना किसी उन खूंखार जानवरों से जो बिना किसी ह्यूमिलिटी के साथ आता हो, बिना किसी ग्रैटिट्यूड के साथ आता हो, जो कि डिवोशन की पार्ट है। इसीलिए कृष्ण गीता में बार बार जब भक्ति की चर्चा करते हैं तो ज्ञान की बातें अंदर रखते हैं। जब ज्ञानी की डेफिनेशन देते हैं वो वही डेफिनेशन होता है जो एक भक्ति की डेफिनेशन होना चाहिए। वो सब इंटर रिलेटेड होते हैं, इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आजकल के सो कॉल्ड अलग अलग मार्गों में फंस करके आप कभी भी रियल भक्त नहीं बन सकते हैं अगर आपका समझ में क्लैरिटी नहीं है, अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज नहीं करते हैं। आप कभी भी ज्ञान मार्गी नहीं हो सकते हैं अगर उसमें भक्ति नहीं है। आप कभी भी कर्म योगी नहीं बन सकते हैं, उसमें ज्ञान भक्ति नहीं है। ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। कृष्ण कहते हैं जो इन चीजों को जान लेता है कि ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, तो वो उस तत्व को प्राप्त कर जाता है। दो तरह के जानकारी होती है। एक जानकारी जो आपने मुझे कहा, मैंने कोई बुक पढ़ा, वो सुन करके पढ़ के एक जानकारी होती है, जानकारी मतलब नॉलेज। एक दूसरी जानकारी होती है जो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी रियलाइजेशन से मुझे हुआ, जो मैंने स्वयं साक्षात्कार किया, जो स्वयं मैंने रियलाइज किया। ये दो तरह के ज्ञान होते हैं। हम दूसरों से मिली जानकारी को अपना ज्ञान समझते हैं और इसी भ्रम के साथ, इसी इल्यूशन के साथ हम मर भी जाते हैं कि मुझे इस चीज का ज्ञान है, जबकि ये जस्ट एक इल्यूशन है। किताब पढ़ के दूसरों से आपने मुझे बताया और मैं सोचा कि मैं जान गया और मैं दूसरों को बताने लगा ये सोच के मैं ज्ञानी हूं। ये जो इल्यूशन है ज्ञान का, उसी इल्यूशन के साथ हम मर भी जाते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मेमोराइज करना किसी चीज को, दूसरे के कही हुई बताई गई चीज को, और उस मेमोरी को, उस स्मृति को ज्ञान कहना, और एक जो मैंने खुद रियलाइज किया है, जो मैंने अनुभव किया है, उसको समझने में दोनों में अंतर है। मैं बहुत बार उदाहरण दिया हूं, कोई तैरने की प्रोफेसर है जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है तैराकी की शास्त्र पढ़ाता है, और एक अनपढ़ गंवार आदमी जो समुन्द्र में रोज तैरता है, मछुआरा है। उस प्रोफेसर जब समुन्द्र में घूमने जाता है, पैर फिसल जाता है तो डूब के मर जाता है, मछुआरा बचाने जाता है, बचा करके बाहर लाकर पूछता है तुम कौन हो जो मैं तैराकी का प्रोफेसर हूं, तुम कौन हो जो मैं मछुआरा हूं, तुझे तो बड़ा अच्छा तैरना आता है, बोले यही हमारी जिंदगी है। समाज में उस प्रोफेसर का रेपुटेशन तो ज्यादा होता है, पर एक्चुअली वो सिर्फ उन तोतों की तरह है जिसने काफी सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा है और उसको बांटता फिरता है। शास्त्रों को कंठस्थ कर, हमारे यहां एक शब्द है कंठस्थ कर लेना, मेमोराइज कर लेना, उसके लिए जो शब्द है वो पंडितों को, जो ज्ञानियों को, जो तथाकथित पंडितों को जो हम कहते हैं कि ये कंठस्थ कर रखा है सारे वेद उपनिषद गीता, अब बड़े हम मिसमराइज हो जाते हैं देख करके जब वो सब गाता सुनता चला जाता है। पर ये शब्द बड़ा मजेदार है, कंठस्थ है, वो गले में है, उसे नीचे नहीं है, है? अगर आज कृष्ण भी मिल जाए ना जिन्होंने गीता का प्रवचन किया, उसको भी अगर आप पूछेंगे गीता सुनाओ, वो 700 श्लोक में से 200-400 तो वैसे ही भूल जाएंगे। शब्द उनका दूसरा होगा, भाव दूसरा होगा, क्योंकि 5000 साल में उनके काफी विचार बदल गए होंगे, काफी नए नए चीजें आएंगे, पुराने हट गई होगी। पर गीता कंठस्थ करने वाले को पूछो, वो 700 के 700 श्लोक एज इट इज सुना देगा, बड़े प्राउडली सुनाएगा। और अगर गीता कंपटीशन हो तो कृष्ण ऑब्वियसली फेल होंगे और वो पंडित जरूर फर्स्ट डिग्री में जीतेगा। पर हम कृष्ण को नहीं मानेंगे उस समय, क्योंकि जिसने याद कर रखा है, हमारे ध्यान में याद किया हुआ व्यक्ति ही ज्ञानी होता है, समझ वाले को न, क्योंकि हम खुद समझ नहीं रखना चाहते, इसीलिए हम समझदार व्यक्ति को भी रेस्पेक्ट दे नहीं सकते। तो कृष्ण आज भी आए तो वो पंडित के सामने तो थर्ड ग्रेड का भी नहीं होगा, क्योंकि उसको 700 श्लोक गीते याद नहीं होंगे। कंठस्थ किया हुआ आदमी एक भी श्लोक गलत नहीं करेगा, पर कृष्ण हजार बार गलत करते जाएंगे, क्योंकि वो उनका मेमोरी नहीं था, वो उनका जो फीलिंग था, जो रियलाइजेशन था, उसका एक्सप्रेशन था। हमने एक कहानी सुनी है, वह लंदन में चार्ली चैपलिन बहुत फेमस कॉमेडियन है, हास्य रस के बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं। तो एक कंपटीशन था, चार्ली चैपलिन की एक्टिंग की कंपटीशन था। चार्ली चैपलिन जिंदा थे, बहुत फेमस थे अपने लाइफ में, दुनिया भर के अलग अलग देशों से बहुत सारे चार्ली चैपलिन के जो फॉलोअर हैं, जो उनके फैंस हैं, वो चार्ली चैपलिन की तरह एक्ट करने के लिए आए कंपटीशन में। चैपलिन को भी लगा मैं भी जाकर देखता हूं कैसा होता है, लोग क्या करते हैं, मैं खुद अपनी नकल में खुद करता हूं, क्योंकि सब चार्ली चैपलिन के ड्रेस में मेकअप में आए थे तो असली नकली का तो पता करना मुश्किल था। चार्ली चैपलिन खुद भी था और उसके फॉलोअर जो एक्ट करने आए थे वो भी उसी मेकअप में थे, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन असली है, सब ना सब असली लगते हैं। कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में चार्ली चैपलिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं नहीं आए। खुद की एक्टिंग के बारे में जो कंपटीशन था उसको जीतने वाले कोई और थे, चैपलिन कहीं नहीं जीता, चार्ली कहीं नहीं जीता, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है वो मेमोराइज करके नहीं जाता है, वो उसका इंस्टिंक्ट होता है, अपने आप निकलता है। जो एक बार कर लिया जरूरी नहीं कि दोबारा वही हो, जो एक बार बोल दिया जरूरी नहीं कि दोबारा वही रिपीट करे, पर रटा हुआ आदमी, मेमोराइज किया हुआ आदमी आचीटी उसी को लेगा। बचपन में हमारे टीचर हमें कहा करते थे स्कूल में, जब बच्चे नकल करते थे उनको कहते हैं देखो नकल करने में भी थोड़ी अकल चाहिए होती है, तुम लोग नकल करके भी फेल हो जाते हो। तो सुनाया करते थे एक नकलची लड़का जो काफी करता है दूसरों का, तो टीचर ने होमवर्क दिया और उसको होमवर्क नहीं करना था, पड़ोस में एक समझदार लड़का था उसके घर में गया, उसकी काफी उठा करके लाया चुरा के, उसको आज इट इज नकल कर गया। तो टीचर ने देखा दोनों की काफी मिलती है लिखी, खाली लिखिया ही लिखाई नहीं मिलती है, वो लाइन की लाइन मिलती है। अगर कहीं के कहीं लंबा चौड़ा हो गया तो इसके के भी उसी तरह का टेढ़ा मेढ़ा है। लिखते लिखते कहीं मच्छर मर गया था तो वो काफी बंद करते करते एक मच्छर रह गया था, मर गया था, तो नकल करने वाले भी मच्छर लाया उसको मार के चिपका दिया था। क्यों? जब आपका समझ नहीं होता है, अपना अकल काम नहीं करता है, तो लोग ऐसे ही नकल करते हैं। रटा हुआ ज्ञान उसी तरह का होता है और बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें चेंज करने का कोई स्कोप नहीं होता है, उसमें बदलने का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी कॉमन सेंस पर ताला लगाए रखते हैं। क्यों दुनिया में ज्यादातर शास्त्रों को फॉलो करने वाले लोग बड़े बड़े फैनेटिज्म को फॉलो करते हैं? क्यों इतना रिजिड होते हैं? वो बाइबल को करे, कुरान को करे, गीता को करे, वेद को करे, खतरनाक हमेशा सोसाइटी के लिए क्यों बनते हैं? क्योंकि वो बात बोलते हैं या करते हैं जो 5000 साल पहले किसी ने बोला, और वो व्यक्ति अगर आज होता तो वो चीजें नहीं बोलता जो पंडित आपको बोल के सुनाता है। दुनिया में बदलाव आता है, ये बोलने वाला जिंदा होता तो जरूर बोलता, पर रटा हुआ व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं है, वो उस नकलची बच्चे की तरह है जिसको वो मच्छर मार के भी चिपकाना पड़ता है, पता नहीं ये भी कोई पाठ हो। वो और हर अक्षर पर जोर देता है, इसी को हम कहते हैं लकीर का फकीर, हर लकीर पर भी जोर देना। समझ नहीं आता है, इसीलिए कंठस्थ का अर्थ सिर्फ इतना है, जो ज्ञान हमें पता है उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि मुझे कुछ पता नहीं है, बस शब्दों का पता है, उसका बाकी कुछ पता नहीं है। शब्द जो कंठ तक है वो कंठस्थ है, इसीलिए शब्द ज्ञान खतरनाक होता है, दोहराते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। जप करने वालों को देखिए, चलता रहता है ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व, 108 पूरा करूंगा तभी जाऊंगा बाथरूम, क्यों 109 हो गया तो भगवान उठ के भाग जाएंगे, 98 हो गया तो भगवान अभिशाप दे देंगे, 108 पूरा करना है। चाय बनी ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व, क्या चाय कड़वा बना रखे ओम भूर्भुवस्व ओम भूर्भुवस्व, चलता रहता है। जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है ये, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण चलता रहता है, पर अंदर कहीं कोई हरि नहीं, ना कृष्ण है, ना ओम है, ना भूर्भुव है, नथिंग। अंदर तो वही 99 डॉलर है कि 100 डॉलर है, वो काउंटिंग चलता रहता है, चाय फीकी है कि गर्मी वो मीठी है, यही चलता रहता है। क्यों? होगा ही नहीं ना, जब भी आप रिपीट करते जाते हैं अननेसेसरी, विदाउट यूजिंग योर माइंड इंटेलेक्ट योर फीलिंग योर हार्ट, सिर्फ वाणी में चलता जाता है, वो कंठ से ऊपर ही रहता है, अंदर जाता ही नहीं है। इसीलिए जप का जो अर्थ था, जपस तदर्थ भावनम, जप का मतलब क्या है कि उसकी जो अर्थ है, जिस शब्द को आप गुनगुनाते हो उसके अर्थों की चिंतन करो, चिंतन में मेहनत लगता है, वो सीरियस चीज होता है, उसमें एफर्ट करना पड़ता है। और हमें ये सिखाया गया शॉर्टकट हुए सब, वही हमें नहीं करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुनी हुई पढ़ी हुई बातें गलत है सज्जनों देवियों, ये मैसेज लेकर मत जाइएगा कि सुनना और पढ़ना बड़ी बुरी बात होती है, इनका अपना यूज है, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर समझेंगे कैसे, अंदर जाएगा कैसे। पर ये डिस्टिंक्शन होना जरूरी है कि स्मृति अलग चीज है, मेमोरी अलग चीज है, और रियलाइजेशन नॉलेज अलग चीज है। नॉलेज गेन्ड बाय रियलाइजेशन इज डिफरेंट द नॉलेज गेन्ड बाय रीडिंग बुक और लिसनिंग समथिंग इज डिफरेंट। एक इंफॉर्मेशन होता है, एक नॉलेज होता है, एक ज्ञान होता है, एक सूचना होता है, दोनों में फर्क सूचना जरूरी है। और जो व्यक्ति सच को ठीक रूप से समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वो उस परम तत्व को प्राप्त कर जाता है। अगले श्लोक पर चलेंगे। बोलिए, प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों अनादि हैं। बोथ द मैटेरियल कॉज द प्रकृति एंड द सोल द पुरुष टू आर बिगिनिंगलेस। यू शुड नो दिस अर्जुना। Also, you should know that the modifications and strands of prakriti are born of the material cause. Duniya mein jo cheeze hum dekhte hain, wo do tarah ki cheeze hoti hain. Ek to jo jad hain, insentient hain, jinme koi jeevan nahi hai, jinko hum matter kehte hain. दूसरा सेंटिएंट होते हैं जिनमें जीवन है, चेतना है, कॉन्शसनेस है। दो तरह के चीजें हैं। ये दोनों चीजें अपने आप में अनादि हैं, न आदि, बिगिनिंगलेस हैं। और याद रखिए, जिसका भी बिगिनिंग नहीं है उसका एंड भी नहीं होता है। इफ इट इज बिगिनिंगलेस इट इज ऑल्सो द एंडलेस। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कोई भी चीज जो पैदा होता है, जिसकी कोई बिगिनिंग है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट भी होगा। सिर्फ उसी का एंड नहीं होता, अंत नहीं होता, जिसका कोई आरंभ भी नहीं होता। ये दोनों चीजों को समझो। एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ये संसार उसी का मॉडिफिकेशन है प्रकृति का। थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये आम व्यवहार की बातें नहीं है। ये जो दुनिया बनी है, एक तो परमात्मा सुप्रीम बीइंग द सोल जिसको हम पुरुष कहते हैं, दूसरी है प्रकृति। प्रकृति को हिंदी में या अंग्रेजी में आप नेचर बोलते हैं, वह यूनिवर्स जो आपको दिखता है आप उसको प्रकृति हिंदी में बोलते हैं, या अंग्रेजी में प्रकृति का ट्रांसलेशन नेचर या यूनिवर्स करते हैं, जो कि गलत ट्रांसलेशन है। और हिंदी में भी प्रकृति को ये दुनिया समझते हैं। यहां प्रकृति का मतलब होता है द प्री क्रिएशन। इट्स नॉट अबाउट द क्रिएशन, इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ द यूनिवर्स बिफोर क्रिएशन। दैट स्टेट इज कॉल्ड प्रकृति। कृति मतलब क्रिएशन। प्र का मत एक प्रिफिक्स है जो क्रिएशन से पहले की स्टेट को यूनिवर्स की बताता है। नॉर्मल भाषा में तो प्रकृति का मतलब यूनिवर्स या क्रिएशन या संसार, जो भी आप कहें, होता है। ये दुनिया जो बनी है, आप और मैं, ये जो पूरा संसार बना है, ये पहाड़, पर्वत, ये सोलर सिस्टम, ये स्टार्स, प्लैनेट्स, जो कुछ भी बना है, वो इस प्रकृति के मॉडिफिकेशन है। और जो प्रकृति है, इट इज बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस, इट इज ऑलवेज देयर, इट इज इटर्नल, एवर एग्जिस्टिंग। तो फिर हमें क्यों दिखता है कि सूरज पैदा हुआ, वो भी मरने वाला है, पृथ्वी भी नष्ट होने वाली है, दुनिया में कोई भी चीज जो आया है उसको जाना जरूरी। ऐसा नहीं कि आप और हम सिर्फ मरेंगे, दुखी मत होइए। ये सूरज, चांद, आकाश, सब कुछ को नष्ट होना है अपने अपने समय पर, क्योंकि जो भी पैदा हुआ है, बना है, उसको नष्ट होना है। दुनिया में दो चीजें पैदा नहीं होती हैं, वो एक प्रकृति, द प्रीकंडीशन ऑफ दिस यूनिवर्स, ये संसार की क्रिएशन से पहले जो अवस्था, और दूसरी प्रकृति आत्मा। थोड़े से संक्षेप में इस चार्ट को समझा दूं। जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, जब सृष्टि आरंभ होती है, तो उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ यूनिवर्स से, जिसको हम प्रकृति या प्राइमोर्डियल मैटर कहते हैं, महत्तत्व एक टेक्निकल टर्म है सांख्य हमारे दर्शन शास्त्र में, हिंदू दर्शन शास्त्र में। यू कैन से इट फर्स्ट प्रिंसिपल और इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस। फिर उससे पैदा होता है अहंकार, अहंकार जो हमारा रेगुलर अहंकार नहीं, दैट इज यू कैन से द सेल्फ आइडेंटिटी, द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद जो प्रकृति तीनों गुणों से बना है, सत्व रज तम, उसकी जो सात्विक प्रधान वृत्ति है, जो सत्व डोमिनेटेड पार्ट है, उससे बनता है आपके माइंड, और जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे आप जिन इंद्रियों से आप ज्ञान करते हैं, और जो तमोगुण प्रधान है, उससे बनती हैं पांच तन्मात्राएं, फाइव एलिमेंटरी, जिसको कहते हैं आप फाइव एलिमेंट्स, द मैटेरियल एलिमेंट्स, जहां से ये दुनिया बनती है, और वो पांच तन्मात्राओं से, एलिमेंट से, फिर फाइव पंच सूक्ष्म तन्मात्र, सूक्ष्म भूत बनते हैं इस यूनिवर्स के, इस मैटेरियल यूनिवर्स के पीछे जो शटल फॉर्म्स हैं वो बनते हैं, और फिर वहां से स्थूल महाभूत, ये ग्रास यूनिवर्स के ग्रास मैटेरियल कॉजेस बनते हैं, हवा, मिट्टी, पवन, जो 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 कुछ है। और रजोगुण प्रधान होने से आपके कर्मेंद्रियां बनती हैं, और इस तरह आपके शरीर और ये संसार दोनों के चीजें बनती हैं। ये जितनी चीजें आपको और ये जो पूरा यूनिवर्स है, वो पांच तत्वों का बनावट है। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे उस प्रकृति के मॉडिफिकेशन है, जिसमें पुरुष का सिर्फ इतना ही रोल है, जो बाहर से सिर्फ सपोर्ट करता है प्रकृति को। वो हम ईश्वर के अंश या पार्ट नहीं है, ना हम खुद ईश्वर हैं। ये संसार प्रकृति का मॉडिफिकेशन है, ये प्रकृति की पार्ट है, और पुरुष या परमात्मा सिर्फ उसकी सानिध्य देता है, उसकी नियरिटी से ये संसार बनता है। ये ओवरऑल एक ढांचा आपको बताया, कभी बाद में डिटेल में बताएंगे। ये जो संसार है, ये उस प्रकृति का अपीयरेंस है, प्रकट रूप है, और प्रकृति उसकी डिसअपीयर्ड फॉर्म है, अनमॉडिफाइड फॉर्म है। जब नमक और चीनी आप देखते हैं, अगर नमक और चीनी को पानी में आप मिला देंगे, वो घुल जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि नमक और पानी अपने एग्जिस्टेंट खो चुके हैं, सिर्फ इतना है कि वो अपने जो ग्रास फॉर्म था, जो अपीयरेंस था, वो उसको खो चुके हैं। अब वो डिसअपीयर हो चुके हैं अपने फिजिकली, पर उनका एग्जिस्टेंस अभी भी बना रहता है। आप चखते हैं तो पानी नमकीन या मीठा लगता है। दोबारा चाहें तो आप उस पानी से नमक बना सकते हैं या चीनी बना सकते हैं, अगर आप सही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। इसी तरह प्रलय शब्द जो हमारे यहां हिंदू ट्रेडिशन में, भारत में यूज करते हैं, उस प्रलय का मतलब क्या है? लय का मतलब होता है मर्ज हो जाना, इमर्ज हो जाना। जैसे नमक पानी में मिलता है तो हम कहते हैं नमक पानी में लीन हो गया, लय हो गया। इसी तरह संसार जब अपने प्री क्रिएशन मोड में कन्वर्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, वो प्रलय है, और जब वो ग्रास फॉर्म में मॉडिफाइड होता है, वो सृष्टि है, वो यूनिवर्स है। प्रकृति का कोई आरंभ नहीं, पुरुष का भी कोई आरंभ नहीं, वो अनादि और अनंत है, पर ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं वो उसका आरंभ नहीं है, ये तो बिगिनिंग विथ बिगिनिंग है। ये संसार तो बना है और नष्ट भी होगा, फिर नए संसार बनेगा, फिर वो भी नष्ट होगा, फिर इस संसार का जो प्री क्रिएशन कंडीशन है वो कभी ना बनता है ना नष्ट होता है, ये तो कंपाउंड है। आपका शरीर भी, आप खुद भी कंपाउंड है। जब आप बोलते हैं मैं अपना नाम लेते, आप ना आत्मा है ना आप शरीर है, यू आर ए कंपाउंड ऑफ, यू आर ए मिक्सचर ऑफ पुरुष एंड प्रकृति। प्रकृति का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो आपका बॉडी है, जिसमें पांचों तत्व है, पृथ्वी है, जल है, आप है, एक्सेट्रा, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, अलग अलग शब्द अलग अलग है, इन पांचों का मिलावट आपका शरीर है। और आत्मा जो पुरुष है, जो अजर है, अमर है, अनादि है, कभी नष्ट नहीं होता। तो जहां जहां संयोग है, जहां जहां कंपाउंडनेस है, वहां तो बिखरना है ही ना। जहां दो चीजें मिलते हैं एक ना एक दिन उनको बिखरना पड़ता ही पड़ता है, नेचुरली हो फोर्सफुली हो, होना ही होना होता है, ये नेचर है। इसीलिए हम क्यों मरते हैं, क्योंकि आत्मा जब बॉडी को के साथ जुड़ता है तो हमारा शरीर बनना शुरू होता है, हमारा एग्जिस्टेंस आता है एज ए जीव, एज ए लिविंग बींग, क्योंकि हम कंपाउंड है। और एक ना एक दिन उसको बिखरना है, आत्मा और शरीर को अलग होना है। जिस दिन आत्मा और शरीर अलग हो जाते हैं हम उसको मृत्यु कहते हैं, और जो जुड़ जाते हैं तो हम उसको जन्म कहते हैं। तो ये जन्म मृत्यु वही होता है जहां कंपाउंडनेस है। पर आत्मा और प्रकृति दोनों अजर अमर है, अनादि अनंत है। आत्मा दो तरह की है, वो आगे हम पढ़ेंगे गीता के इसी में तीसरे चौथे श्लोक में पढ़ेंगे। एक आत्मा जो शरीर को धारण करके मैं और आपके रूप में घूमता है, भोगता है, खाता है, एंजॉय करता है, दुखी है, सुखी है। दूसरा एक सुप्रीम बींग जिसके कारण यह संसार बना है, ना वो कुछ चखता है, देखता है, ना खाता है, पीता है, पर पूरे संसार को कंट्रोल करता है। अगले श्लोक पर चलते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रोच्यते कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रोच्यते। हेतु कहते हैं कॉज। ये प्रकृति जिसकी चर्चा अभी हमने की, मैटेरियल कॉज, द प्रीमोटियल कॉज, वो आपके कार्य के, आपके शरीर के, या संसार में जो भी चीजें दिखता है, या जो करण है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपकी सेंसेस है, उन सबका वो कॉज है, कारण है, क्योंकि उसी से बना है। पर जो आपका सुख और दुख है, जो आप सुख दुख भोगते हैं, उसका कारण आपके आप खुद होते हैं। संसार के, आपके शरीर के बनने में कारण है प्रकृति, पर जो आपके इमोशन, जो आप सुख दुख भोगते हैं, उसका कारण, उसकी जो भोक्तृत्व है, जो एंजॉयरशिप है, वो पुरुष में होता है, आत्मा में होता है। सुख दुख दूसरों के कारण नहीं होता है, खुद के कारण होता है। फूल जंगल में खिलता है, या पार्क में खिलता है, या रोड के किनारे खिलता है, फूल फूल होता है। फूल ना सुंदर होता है, ना सुंदर होता है, ना लाल होता है, ना पीला होता है। जब तक उसको कोई आदमी ना देखे तब तक फूल का ना कोई गंध है, ना रस है, ना कोई सुंदर है, ना सुंदर है। जब आप देखते हो तो आप कहते हो ये पीला है, ये लाल है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये अच्छा सुगंध है, ये दूसरे सुगंध है। अगर आपकी परसेप्शन कुछ और है, आपकी आईज में कोई प्रॉब्लम है, आपके नोज में कोई प्रॉब्लम है, आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम है, आपके परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो फूल अच्छा फूल आप जो दूसरों को अच्छा लगता है आपको बुरा लगेगा, जो बुरा लगता है आपको अच्छा लगेगा। आप नहीं होते तो भी फूल होता, पर फूल सुंदर और असुंदर नहीं होता, फूल फूल होता है। सुंदरता असुंदरता आपके सुख दुख से जुड़ा हुआ है और वो आपके अंदर होता है, यह आपका प्रोजेक्शन है। बड़े मजेदार चीज, देखिए दुनिया कैसे परसेप्शन से चलता है। और हम आजकल आप देखेंगे ये जो कैक्टस फूल होते हैं ज्यादातर लोगों के आजकल घरों में, फैशनेबल लोगों के घर में होता है, बहुत सारे लोगों के घर में तो कैक्टस की भरमार होता है। आज से 50-100 साल पहले, 150-200 साल पहले ये जंगली कांटे वाले फूल जहरीले होते हैं, गांव में इनको वो फेंस लगाने के लिए गाय बकरी ना घुस जाए लगाया करते थे इनको, अगर ये किसी के घर में दिख जाए तो उसको बेवकूफ समझते थे, कांटे वाला पौधा लगा रखा है। आज अगर गुलाब की बगीचा बना रखा है तो लोग आपको बैकवर्ड समझते हैं, कैक्टस की गार्डन है तो आप मॉडर्न समझे जाते हैं। 20-25 साल पहले अगर भारत में अभी भी गुलाब, क्योंकि हम तो थोड़ा वेस्टर्न से नकल करते रहते हैं, अब वेस्ट में गुलाब का इतना चलन नहीं रहा घर में सजाने का जितना कैक्टस फूल के। कैक्टस सुंदर होता है, 50 साल पहले किसी को बोलो वो तुम्हें बुद्धू समझता, आज अगर कोई बोले और आप ना आप कहो कि कैक्टस बेकार है कंटीले है तो आप बैकवर्ड माने जाओगे। कैक्टस तो कैक्टस है, गुलाब तो गुलाब है, परसेप्शन आपका बदल रहा है। आज आपको वो ज्यादा अच्छा लग रहा है और चेंज होता है, फैशन चेंज होता रहता है, जो कपड़े आज आपको पुराने फैशन के लगते हैं 25 साल के बाद वही रिपीट होकर आता है, फिर वो नया हो जाता है, मॉडर्न हो जाता है। एक छोटी सी कहानी कह के समाप्त करूंगा। गंगा के किनारे हरिद्वार में दो लड़के बैठे हुए थे, दो दोस्त बातें कर रहे थे, सामने देखा कोई व्यक्ति बैठा हुआ था गंगा के किनारे सामने, उसके लंबे लंबे बाल पीछे गिरे हुए थे, एक साधु बैठे हुए थे और वो जो कपड़े पहने हुए थे तो आधे उनका पीठ भी दिख रहा था। लड़के को लगा कोई लड़की बैठी हुई है और धीरे धीरे उसका मन उस पर जाने लगा, उसके लंबे बालों पर, उसके खुले पीठ पर। थोड़ी देर के बाद उसको लगा यार इसको मैं देखूं इतने देर से कैसी है, सामने गया देखा दाढ़ी मूंछ वाले एक बाबा बैठे थे। वो लड़का आधे घंटे तक नारी का स्मृति का सुख ले रहा था एक पुरुष को देख करके, और जैसे ही सामने से देखा वो सुख उसको ग्लानी में बदल गया, उसकी वैराग्य में बदल गया। वो बेचारा साधु को पता ही नहीं कि वो मेरे बारे में क्या क्या फील कर रखा है। साधु तो साधु है, आप उसके पीछे देख करके लड़की समझ के अट्रैक्टेड होते हो, सामने देख करके आप डिसअटैच्ड होते हो, ये आपका प्रॉब्लम है, साधु का नहीं है। गुलाब का प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको वो सुंदर आज दिखता है, 50 साल पहले नहीं दिखता था। कैक्टस का प्रॉब्लम नहीं है कि वो कंटीला है या सुंदर है, वो आपका परसेप्शन है, आपका प्रोजेक्शन है कि आप सुख लेते हो कि दुख लेते हो। सामान तो आज ही टीज है, संसार की चीजें तो आज ही टीज है। प्रकृति ने संसार के हर चीज को बनाया है, प्रकृति से बनी है, पर उसके सुख दुख लेना ये हमारा अपना परसेप्शन है। हम बचपन से जिस माहौल में पले बड़े हैं, जिस तरह के सोच लेकर के चलते हैं, वो डिसाइड करता है, जैसा मेरा स्टेट ऑफ माइंड है वो डिसाइड करता है कि वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। बाकी की चीजें हम आगे चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।